कबीर और आरव हॉस्पिटल रूम में एक दूसरे से बात कर रहे थे। कबीर ने आरव को पिछले सारे दिनों की अपडेट दे दी थी और साथ में अब्बास की मौत के बारे में भी बता दिया था। कबीर ने कुछ और भी नोटिस किया था जो उसने आरव को बताया। उसके हिसाब से कुछ खास मौके ऐसे होते थे जब अयान आयु को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेकर जाता था और उसे इसके पीछे कोई बड़ी वजह लग रही थी। पूरी बात जानने के बाद आरव ने एक बार इस मामले पर उसे चुप्पी साधने को कहा। उनकी बातें हो जाने के बाद आरव बोला, अच्छा ठीक है, बाकी चीज़ देख लेना। अब कुछ दिनों तक खुराना इंडस्ट्रीज़ तुम्हारे ही हाथ में है। खुराना इंडस्ट्रीज़ की चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके जाने के बाद काफ़ी हद तक सब कुछ दादी ही देख रही हैं। कहना पड़ेगा, इस उम्र में भी उन्हें बिज़नेस की अच्छी नॉलेज है, कबीर ने बताया। गौरवी जी के बिज़नेस संभालने की बात सुनकर आरव ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी दादी हैं कबीर, उन्हें किसी भी मामले में कम मत समझना। डैड के जाने के बाद जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया था, सारा काम उन्हीं ने संभाला था। आरव और कबीर बातें कर रहे थे तभी आयु और अयान दोनों ही अंदर आ गए थे। वो दोनों काफ़ी देर से उनका वेट कर रहे थे और उनके चेहरे पर इस बात की इरिटेशन साफ नज़र आ रही थी। अंदर आते ही आयु ने कहा, पिछले 40 मिनट से हम दोनों वेट कर रहे हैं, इतनी भी क्या बात है तुम दोनों की जो ख़त्म ही नहीं हो रही? इतनी देर तो मैंने भी आरव से बात नहीं की थी, मैं बस उन्हें बिज़नेस की अपडेट दे रहा था और कुछ नहीं, कबीर ने बताया। आयु ने कबीर की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों की ही सच्चाई अच्छे से जानती हूँ। सीधे सीधे कहो ना कि हमें बाहर भेजकर तुम दोनों अपनी माफिया वाली बातें कर रहे थे। अरे वाह मिसेस खुराना, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो। अब जब पता चल ही गया है तो अगली बार प्राइवेसी मांगने के लिए बहाने नहीं बनाने होंगे, आरव ने भौहें उठाकर जवाब दिया। अयान और आयु दोनों ही अब उनके बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए उनके सामने बात करने में आरव और कबीर को कोई झिझक नहीं थी। अब्बास की मौत से आयु अब तक अनजान थी, लेकिन अयान उस बारे में सब जानता था। इनफैक्ट वो तो प्लानिंग तक में उनके साथ था। उनकी बातें हो जाने पर अयान ने कहा, देखो अब मेरी बारी है, तुम्हारी बातें ज़रूरी होगी जो तुमने अब तक बता दी होगी। आयु, तुम्हें भाई से कुछ खास बात नहीं करनी होगी, हमेशा की तरह उनसे उन्हीं की शिकायत करनी होगी, तो ये काम तुम बाद में भी कर सकती हो। मेरी बात इम्पॉर्टेंट है तो मुझे पहले बात करने दो, आई रिक्वेस्ट यू। क्या टाइम आ गया, अपने ही पति के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सबकी परमिशन लेनी पड़ रही है, आयु ने मुंह बनाकर कहा। फिर वो अयान की तरफ देखकर बोली, अच्छा ठीक है, कर लो बात, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लेना। पहले अयान और आयु बाहर गए थे तो अब आयु और कबीर बाहर आ गए थे। उनके जाते ही अयान जल्दी से बोला, मेरे मुंह से गलती से साक्षी की बेटी का जिक्र हो गया, उन्हें लगा कि मुझे सब कुछ पता है और वो नाराज़ होकर चली गईं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उसके सामने ये मत बताना, मुझसे क्या एडवाइस लेने आए हो, तुम दोनों के बीच का मामला है, खुद निपटाओ। मेरे होश में आने का वेट कर रहे थे क्या सब, जो सारी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आ गए, आरव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वैसे भी उसे सबके साथ बातें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और वो अब कुछ देर आराम करना चाहता था। भाई आप कितने रूढ़ हो, मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, अयान ने मुंह बनाकर कहा। वो वहीं पर बैठ गया और बोला, जब तक आप मेरी हेल्प नहीं करोगे मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। आरव ने अयान की तरफ देखकर आइज रोल करते हुए कहा, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, जाकर उससे बात करो और उसे कहो कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। अब तक तो उसे ये डाउट भी हो गया होगा कि मैंने ही तुम्हें सब बताया है, वो मुझसे अलग से नाराज होगी। ऐसा करो, कोई ऐसी दवाई इंजेक्शन दे दो जिससे मैं वापस बेहोश हो जाऊँ, मुझे होश में आना ही नहीं चाहिए था। आप तो मुझे और हॉपलेस कर रहे हो, ऐसा तो मत कीजिए, अयान ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। आरव ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ओके, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसके पीछे जाकर उससे बात करनी चाहिए थी, यही सही मौका है जब वो तुम्हें सब बता देगी। और हाँ, पूरी बात जानने के बाद अगर तुमने ओवर रिएक्ट किया या फिर मेरी फ्रेंड को छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा, बोलते हुए आरव के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी सीरियस थे। क्या सच में बात इतनी बड़ी है, अयान ने हैरानी से पूछा, जिस पर जवाब में आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। अयान तुरंत खड़ा हुआ और आरव से बोला, ठीक है, मैं साक्षी से मिलने जा रहा हूँ, फिर भी अगर मामला बिगड़े तो प्लीज़ संभाल लीजिएगा भाई। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। अयान कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि वापस आरव की तरफ मुड़कर बोला, मैं नर्स को और डॉक्टर सिद्धि को भेज रहा हूँ, आपके सारे टेस्ट करवाने भी ज़रूरी हैं, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। आरव को सब कुछ समझाकर अयान जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया। वहीं आयु फ्री होने की वजह से VIP एरिया के पासेज में वॉक कर रही थी। आरव का रूम भी VIP एरिया में ही था जहाँ पर फैज़ का था। उसे फ्री देखकर फैज़ का अटेंडिंग डॉक्टर उसके पास आकर बोला, डॉक्टर ओबेरॉय, मुझे इमरजेंसी के लिए जाना पड़ेगा, क्या प्लीज़ आप मिस्टर खान के रूम में जाकर उनका रेगुलर चेकअप कर सकती हैं? नहीं, वो मैं, आयु से मना करने की कोशिश कर रही थी। उसके बात पूरी होती उससे पहले ही दूसरा डॉक्टर बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी कीजिएगा और उनकी मेडिसिन भी उन्हें दे दीजिएगा, आई हैव टू रश, कहकर वो वहां से चला गया। आयु के पास अब फैज का चेकअप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो गुस्से में बड़बड़ाकर बोली, अजीब इंसान है, जबरदस्ती अपना काम मेरे सिर पर डालकर चला गया। अरे और भी तो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, लेकिन फिर भी नहीं, इसे मैं ही फ्री लगी। आरफ को पता चला कि मैं उसके रूम में गई हूँ तो सबसे पहले वो मेरी जान लेगा। अब जो भी हो जाना तो पड़ेगा ही। मजबूरन आयु को फैज को अटेंड करने के लिए जाना ही पड़ा। वो उसे काफी दिनों बाद देख रही थी। रूम के अंदर आते की आयु को काफी हैरानी हुई, क्योंकि फैज की हालत में इतनी जल्दी बहुत सुधार आ चुका था। और वहीं आयु को अपने सामने देखकर फैज के फेस पर एविल स्माइल थी। पहले उसकी आईज के अलावा और कोई बॉडी पार्ट रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन अब उसे देखकर लग रहा था कि उसकी 40% बॉडी हील हो चुकी थी, और ये आयु और आरफ के लिए एक अच्छा साइन नहीं था। अयान के बाहर निकलने का वेट करते हुए आयु वीआईपी एरिया के पासेज में वॉक कर रही थी, तभी फैज का अटेंडिंग डॉक्टर आया और जबरदस्ती आयु को फैज को अटेंड करने के लिए कहकर चला गया। कोई और डॉक्टर वहां आसपास नहीं होने की वजह से मजबूरन आयु को फैज के रूम में जाना पड़ा। वहां जाकर उसने नोटिस किया कि फैज ने इतने कम दिनों में काफी इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी। आयु रूम के अंदर आते हुए धीरे से बोली, वो अटेंडिंग डॉक्टर बाहर गए हैं, मुझे आपका चेकअप करना है, प्लीज बी कंफर्टेबल। आयु काफी हिचकिचाते हुए बात कर रही थी। आयु को इस तरह हिचकिचाते देखकर फैज के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने आयु को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में बोला, पहले आप तो कंफर्टेबल हो जाइए, हम तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तभी होते हैं जब आप हमारे आसपास होती हैं। आयु चुपचाप अपना काम कर रही थी, तभी फैज ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आयु को लगा नहीं था कि फैज के हाथ पैर काम करते होंगे, उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। उसने आयु को अपने पास खींचा और अटकती आवाज में कहा, काफी काफी वीक हो गई हैं आप, मरा नहीं है अभी आप, आपका हस्बैंड जो आप खुद का ध्यान नहीं रख रही।
आयु फैज से खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फैज ने उसका हाथ कस कर पकड़ रखा था। वो आगे बोला, क्या क्या लगा था आरफ खुराना को, हम कभी ठीक नहीं हो नहीं होंगे, थोड़े दिन और चैन से बिता लीजिए आप दोनों साथ में, एक बार हम पूरी तरह ठीक हो गए तो हमारे साथ उन्होंने जो भी किया उसकी हर एक चीज की सजा देंगे हम उन्हें। बोलते हुए फैज ने आयु का हाथ झटके से छोड़ दिया। आयु फैज की इस हरकत पर काफी घबरा गई थी, उसने उसका पूरा चेकअप भी नहीं किया था और सारा सामान वहीं पर छोड़कर बाहर भाग गई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर घबराहट। आयु बाहर बैठकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, तभी कबीर उसके पास आया। कबीर आयु के पास बैठा और उससे पूछा, क्या हुआ आपको, आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं, कहीं सर को तो कुछ, बोलते हुए कबीर रुक गया। तभी आयु ने नामे सिर हिलाया। आरफ के ठीक होने का सुनकर कबीर ने राहत की सांस ली, फिर उसने हैरानी से पूछा, अगर सर ठीक है तो आप रो क्यों रही हैं और आपके चेहरे पर ये घबराहट क्यों है। वो मैं फैज खान के रूम गई थी, वो ठीक हो रहा है, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है, वो बोल सकता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा और आरफ को मारने की धमकी दी, आयु ने अटकते हुए बताया। फिर उसने कबीर के चेहरे की तरफ देखा जिस पर गुस्से के भाव थे। कबीर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले आयु झट से बोली, प्लीज आरफ को कुछ मत बताना, मैं उसके रूम में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके अटेंडिंग डॉक्टर ने जबरदस्ती मुझे चेकअप करने के लिए वहां भेज दिया। तुम तो माफिया से हो ना, प्लीज उसका कुछ करो, वो हमें अलग करना चाहता है, वो मेरे आरफ को मारना चाहता है। कबीर ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और जवाब में कहा, आप घबराइए मत और इस बारे में सर से कुछ मत कहिएगा, मैं खुद ही देख लूंगा, वैसे आगे से ध्यान रखिएगा, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो आप उनके रूम में नहीं जाएंगी। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से आरफ के रूम में चली गई। अयान जा चुका था और डॉक्टर सिद्धि ने आरफ के सारे जरूरी टेस्ट भी करवा लिए थे। आरफ थक गया था इसलिए सिद्धि ने उसे इंजेक्शन देकर सुलाया था। आयु आरफ के पास बैठ गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। फैज ने जो भी किया था उसके बाद वो काफी घबरा गई थी और एक पल के लिए भी आरफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ अयान आरफ के कहने पर साक्षी के घर पहुंचा। रास्ते में अयान ने उसे कॉल करके बताने की भी कोशिश की, लेकिन साक्षी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। लकीली उस वक्त मंथन घर पर नहीं था। वहीं अचानक अयान को अपने घर पर देखकर साक्षी और नाराज हो गई। साक्षी अयान के पास आई और तेज आवाज में कहा, अयान मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तुम्हें मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑलरेडी तुम इतनी गलतियां कर चुके हो, तुम्हें मेरे बारे में सब सच पता था लेकिन तुमने मुझसे छुपाया, बोलते हुए साक्षी की आंखें नम होने लगी। अयान साक्षी के सामने आया और काफी शांत तरीके से बोला, आई स्वेयर साक्षी मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना जानता हूँ आपकी एक बेटी है, उसके बारे में भी गलती से भाई के मुंह से निकला था, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी भी चीज से, आप समझते क्यों नहीं है, आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो वो भी मत कीजिए, लेकिन मुझसे नाराज तो मत रहिए। अयान ने काफी सुलझे हुए तरीके से अपनी बात साक्षी के सामने रखी। वो अभी भी दरवाजे पर ही था, साक्षी ने उसे अंदर आने को नहीं कहा था। साक्षी ने अयान की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अयान ने धीरे से कहा, प्लीज अंदर आने दीजिए, एक बार समझने का मौका तो दीजिए, मैं आपकी हर एक बात समझूंगा, और अगर तुमने नहीं समझा तो बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी ये लगा कि उन सब में मेरी गलती थी तो फिर मुझे और हर्ट होगा। साक्षी ने भारी आवाज में कहा। साक्षी की बातों से अयान को साफ हो गया था कि वो कितनी ज्यादा इनसिक्योर है। आरव ने जो बताया था उस हिसाब से सच में कुछ ऐसा हुआ था जिसने साक्षी की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। कुछ पल सोचने के बाद अयान ने कहा, ठीक है, आपको लगता है कि मैं इतना इमैच्योर हूँ कि आपकी बात को नहीं समझूंगा तो कुछ मत बताइए, बस मुझे अंदर आने दीजिए। हम कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, पर ये मत कहिए कि मैं आपकी लाइफ से चला जाऊं या आपसे दूर रहूं। ये मुझसे नहीं होगा। अब अयान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। साक्षी की आंखों में आंसू थी, इसलिए अयान ने अब साक्षी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अयान साक्षी को सहलाते हुए बोला, जो भी हुआ होगा वो सच में बहुत बुरा होगा, तभी आप किसी पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। मैंने दिल से आपसे प्यार किया है, कभी नहीं सोचा था कि आपका कोई पास्ट रहा होगा। आप कंफर्टेबल नहीं है तो आई प्रॉमिस मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगा, हम इस बारे में बात भी नहीं करेंगे। बोलते हुए अयान साक्षी को प्यार से सहला रहा था। फिर वो साक्षी से अलग हुआ और उसके आंसू पूछे। साक्षी का मूड सही करने के लिए अयान ने कहा, भाई को चेक करने के चक्कर में जल्दी हॉस्पिटल आ गया था और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, क्या आप मेरे लिए कुछ बना सकती हैं? हमेशा की तरह कुछ प्यार से और मेरी चॉइस के हिसाब से। साक्षी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। भले ही अयान साक्षी से सच ना जान पाया हो, फिर भी उसने साक्षी को मना लिया था। साक्षी ने उसके लिए खाना बनाया और फिर वो दोनों साथ में लंच ले रहे थे। इतनी देर में अयान ने एक बार भी साक्षी को महसूस नहीं होने दिया कि उसने थोड़ी देर पहले उसके साथ काफी बदतमीजी से बात की थी। अचानक साक्षी ने कहा, खाना खत्म कर लो, हम बात करते हैं। अयान का प्यार देखकर साक्षी को यकीन हो गया था कि वो वाकई और लोगों से अलग है और उसका सच जानने के बाद कभी उसे औरों की तरह जज नहीं करेगा।